ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भुज और दाहोड़ के मुकाम पर 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि नए प्रोजेक्ट मुल्क को आलूदगी से पाक तवानाई और सरकर्दा नीलगू मईशत के आलमी मरकज के तौर पर उभरने में मददगार साबित होंगे। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे मुस्तहकम हुक्मरानी और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। कुल पार्टी पार्लियामानी वफूद पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए आलमी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। पंचायत की सतह तक दुरुस्त मौसमी पेशगोई के लिए भारत में तैयार आला रेजोल्यूशन वाले भारत के पेशगोई करने के निजाम का आगाज किया गया है। इसराइल ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाई को रोकने की अमरीका की नई तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। और भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज और दाहोड़ के मकाम पर 77,400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर भुज में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ये इकदामात समंदरी मईशत के तौर पर भारत के उभरने में और आलूदगी से पाक तवानाई का आलमी मरकज बनने में अहम किरदार अदा करेंगे।
आज यहाँ विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी, आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये हुकूमत का अहद है कि हर शहरी को बिजली तक रसाई हासिल होनी चाहिए और उनका बिजली का बिल सिफर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आगाज इस जिमन में किया गया है।
हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहाँ मेरे कच्छ में बन रहा है। खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी जीरो हो।
वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि कच्छ आलूदगी से पाक तवानाई का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बन रहा है।
हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है।
इससे कबल जनाब मोदी ने दाहोड़ में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 1,40,00,000,000 भारतीय मुत्तहिद हैं और एक विकसित भारत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को निशाना बनाकर कहा कि जहां भारत सियाहत को फरोग देता है, जिससे अवाम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहीं पाकिस्तान सियाहत को दहशतगर्दी की तरह इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि भारतीय इकदार और जज्बात का इजहार है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता।
अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आज 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। साल 2014 में आज ही के दिन जनाब मोदी ने भारत के वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया था। ये मुल्क की जदीद सियासी तारीख का अहम मोड़ था क्योंकि इससे भारत में 30 साल की इत्तेहाद की सियासत का खात्मा हुआ था और अवाम ने बीजेपी को वाजह और फैसला कुन अक्सरियत दी थी। पेश है एक रिपोर्ट।
26 मई 2014 की शाम को उस वक्त तारीख रकम हुई जब नरेंद्र मोदी ने अवाम की जानिब से तारीखी मैंडेट हासिल करने के बाद राष्ट्रपति भवन के सब्जार पर भारत के 14वें वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। मुल्क की अवाम ने नरेंद्र मोदी में एक रोशन, फैसला कुन और तरक्की पर मरकूज रहनुमा को देखा जो अरबों भारतीयों के ख्वाबों और उमंगों की तकमील के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगा।
तरक्की के लिए उनकी तवज्जो और गरीब से गरीब शख्स की जिंदगी में मयारी बदलाव लाने की उनकी कोशिशों ने नरेंद्र मोदी को मुल्क के तूल अर्ज में एक मकबूल रहनुमा बना दिया। गुज़िश्ता 11 साल में मुल्क ने सभी शोबों में जबरदस्त तब्दीलियां देखी हैं और नया एतमाद हासिल किया है। आम आदमी के लिए बुनियादी सहूलतों में बेहतरी, बुनियादी ढांचे को तकवियत और मईशत में इस्तेकाम से लेकर रोजगार पैदा करने, दाखिली सलामती की यकीन दहानी और भारत के आलमी कद को बुलंद करने तक जनाब मोदी की क्यादत ने दुनिया भर में नए नकूश छोड़े हैं। नई दिल्ली से सकलेन की रिपोर्ट के साथ खबरों के लिए मैं माजिद अली।
भारत आलमी पैमाने पर पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस ज़मन में कसीर पार्टी के वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर बर्दाश्त का भारत का पैगाम आम कर रहे हैं। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की ज़ेर क़यादत कुल पार्टी वफद ने कांगो के खारजी उमूर के वजीर ममलकत थेरेसे वैगनर से आज मुलाकात की। जनाब शिंदे ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मुस्तहकम मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कांगो की हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया अदा किया।
इस बैठक में हमने किस प्रकार से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से जूझ रहा है, टेररिज्म से लड़ रहा है, इन्हें भी हमने वही मैसेज दिया, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो हमारा नया नॉर्मल है। ट्रेड एंड टेरर कैनॉट गो टूगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टूगेदर।
एनसीपी शरद चंद्र पवार की सुप्रिया सुले की जेर क्यादत कसीर पार्टी एक और वफद ने कतर के दाखिली उमूर के वजीर ममलकत शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी से मुलाकात की। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क्यादत वाले वफद ने सियोल में जुनूबी कोरिया के कौमी असेंबली की कौमी दिफाई कमेटी के चेयरपर्सन सुंग जोंग से मुलाकात की। वफद ने यह कहते हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में उन्हें तफसीलात से आगाह किया कि इसका मकसद भारत में फिरका वाराना हम आहंगी में खलल डालना था। बाद में मीडिया से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि जुनूबी कोरिया अकवामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल का अहम रुकन है और इसका रोल अहम है।
To sponsor terrorism. If you have seen and read it, there is a sky, in the sky they interview a Khwaja Sharif, the Pakistan defense minister. He admit that we have been doing this dirty work for the last 30 years. He's on record. Even their army chief has admitted the how they, India and Pakistan are different weeks before the Pahalgam attack and is followed by Pahalgam attack.
स्लोवेनिया में डीएमके के रुकने पार्लियामेंट कनी मोजी की जेरे क्यादत कुल पार्टी वफद ने कौमी असेंबली की खारजा पॉलिसी की कमेटी के चेयरपर्सन पेट्रिक बेकोविच के साथ भारत स्लोवेनिया पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के मिरोस्लोव ग्रेगोरिक से मुलाकात की। वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर बर्दाश्त से मुतालिक भारत के मुस्तहकम अहद और इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय का पैगाम दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाजे किया है कि दहशतगर्दी की तंजीमें पाकिस्तान के शहरों और कस्बों से खुलेआम अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में खुला कारोबार है जिसकी हिमायत माली एयानत और इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज और सरकार के जरिए किया जाता है। एक जर्मन अखबार के साथ इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दों को एक वाजह पैगाम भेजा है कि उन्हें दहशतगर्दाना हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों जानिब से फौजी कमांडरों के दरमियान बराह रास्त राब्ते के जरिए फायरिंग रोकने पर इत्तेफाक किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अहम हवाई ठिकानों और फिजाई दिफाई निजाम पर मौसर तौर पर हमला किया और उन्हें नाकारा बना दिया। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی اور ماؤ نوازیت سے متعلق مودی حکومت کے مصمم موقف کا اعادہ کیا ہے۔ پہلگام میں سیاحوں کی حالیہ المناک ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ نے آپریشن سندور کے ذریعے بھارت کی مناسب اور فیصلہ کن کارروائی کو اجاگر کیا۔ مہاراشٹر کے اپنے دورے کے دوران ناندیڑ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس آپریشن نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ نیا بھارت اپنے عوام اور اقتدار اعلی کے خلاف کسی بھی طرح کے خطرے کا منہ توڑ جواب دے گا۔
آپریشن سندور نے ہمیشہ کے لیے نہ کیول پاکستان پوری دنیا میں ایک سندیش بھیجا ہے کہ بھارت کی سینا، بھارت کی جنتا اور بھارت کی سیما اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتے، ورنہ نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں۔
اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلی وسنت راؤ نائک کے قداور مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ جناب شاہ نے خشک سالی سے متاثرہ مراٹھواڑہ خطے میں پانی کی قلت پر توجہ مرکوز کرنے پر دیویندر فڑنویس کے کام کی ستائش کی۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ آبی گریڈ اسکیم کے تحت مراٹھواڑہ خطے میں 5 سال کے اندر اندر پانی کی باقاعدہ فراہمی ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ارضیاتی سائنسز کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج نئی دلی میں بھارت کے موسمی پیشگوئی کرنے کے نظام کا آغاز کیا۔ یہ نظام سال 2022 سے تجرباتی مراحل میں تھا اور اب یہ آخر کار کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
پونے میں قائم انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹراپیکل میٹرولوجی کے ذریعے تیار کیا گیا بھارت کا پیشگوئی کرنے کا نظام BFS 6 کلومیٹر کے دائرے میں پیشگوئی کرے گا، جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ محکمہ موسمیات کو چھوٹے پیمانے کی موسمیاتی صورتحال کے بارے میں مزید درستگی کے ساتھ پیشگوئی کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ BFS جو کہ پنچایت کی سطح تک کام کرے گا، توقع ہے کہ دیگر معاملات کے علاوہ بہت زیادہ بارش کے واقعات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گا۔ یہ نیا ماڈل ترقی تقریباً 6 کلومیٹر کے افقی دائرے کا احاطہ کرے گا، جو کہ مثالی طور پر کسی کلسٹر یا پنچایت کا حجم ہوتا ہے۔ آکاشوانی نیوز دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔
اسرائیل نے اس نئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت غزہ میں اس کی کارروائی روکنے اور مزید 10 یرغمال افراد کی رہائی کو ممکن بنانے کی بات کہی گئی تھی۔ اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر افسر نے آج اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ امریکی سالسکاروں نے رات میں یہ تجویز پیش کی تھی۔ افسر کے مطابق اس کے تحت 5 زندہ یرغمال افراد کی رہائی، 5 مردہ یرغمال افراد کی لاشوں کی حوالگی، غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت، 70 دن کی جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات شامل تھے۔ افسر نے مزید کہا کہ اسرائیل نے اس تجویز کو حماس کے سامنے خود سپردگی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ روس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ شروع کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ روس نے ٹرمپ کے بیان کو ذہنی انتشار سے تعبیر کیا ہے۔ جرمنی کے سوہل میں جاری ISSF جونیئر عالمی کپ 2025 میں بھارتی نشانے بازوں نے پیر کے روز بھی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ جاری رکھا۔ اس کے تحت بھارتی نشانے باز تیجسوینی نے 25 میٹر پسٹل زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوینی 8 خواتین کھلاڑیوں کے فائنل میں 5 نشانے لگانے کے بعد 31 نمبر پر پہنچ گئی ہیں۔ فی الحال بھارت 11 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ان میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ ISSF جونیئر عالمی کپ جونیئر نشانے بازوں کے لیے دنیا کے سب سے باوقار ٹورنامنٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات میں بھوج اور داہوڑ کے مقام پر 77,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ نئے پروجیکٹ ملک کو آلودگی سے پاک توانائی اور سرکردہ نیلگو معیشت کے عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وزیراعظم کی حیثیت سے 11 سال مکمل کر لیے ہیں، جس سے مستحکم حکمرانی اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ کل پارٹی پارلیمانی وفود پاکستان کی زیر سرپرستی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے عالمی لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پنچایت کی سطح تک درست موسمی پیشگوئی کے لیے بھارت میں تیار اعلی ریزولوشن والے بھارت کے پیشگوئی کرنے کے نظام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کو روکنے کی امریکہ کی نئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔